नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करने वाले हैं। ये विचार हमें पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक उद्बोधन से मिला है, जो अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और इसका शीर्षक है वेद माता, देव माता, विश्व माता।
बड़ा गहरा शीर्षक है।
जी बिल्कुल।
इस उद्बोधन में ना पूज्य गुरुदेव दो तरह की माताओं के महत्व पर जोर देते हैं। एक तो हमारी जन्म देने वाली माँ,
हाँ,
जो शरीर बनाती हैं, पालती हैं, और दूसरी वो माँ जो हमारी आत्मा का पोषण करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं।
जी
शुरुआत करते हैं जन्म देने वाली माँ से। गुरुदेव कहते हैं भी उनके उपकार तो गिने ही नहीं जा सकते।
सही बात है।
9 महीने गर्भ में रखना, फिर अपना ही रक्त दूध बनाकर पिलाना, दिन रात एक करना।
बिल्कुल।
इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है मातृ देवो भव, मतलब माँ साक्षात देवता है और सबसे पहले पूज्य। जी हाँ, सबसे पहले। और इसी आधार पर पूज्य गुरुदेव हमारी दूसरी माँ, मतलब आत्मिक माँ, गायत्री माँ की बात करते हैं।
हाँ।
कि जैसे जन्म देने वाली माँ शरीर को देखती है, वैसे ही गायत्री माँ हमारी आत्मा को, उसको सभ्य बनाती हैं, सुसंस्कृत उन्नत बनाती हैं।
आत्मा का पोषण, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है।
हाँ, और गुरुदेव कहते हैं कि ये जो आत्मिक पोषण है ना, ये शायद शारीरिक पोषण से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हमारे होने के मूल को, हमारे अंतःकरण को सींचता है।
अंतःकरण की शक्ति, ये शब्द गुरुदेव बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसे थोड़ा और खोलेंगे, मतलब इसका इतना महत्व क्यों है?
देखिए, पूज्य गुरुदेव का मानना था कि इंसान की असली कीमत उसके बाहरी रूप से नहीं है। मतलब वो कितना स्वस्थ है, कितना पैसा है या कितना बुद्धिमान है, ये जरूरी है, पर असली कीमत वो उसके अंतःकरण से पता चलती है, उसकी भीतरी स्थिति कैसी है।
कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे गांधी जी का उदाहरण वो देते हैं।
शरीर से कितने दुबले पतले थे
जी, पर अंदर की शक्ति, अंतःकरण की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया।
सही कहा।
नेपोलियन हो, बुद्ध हो, विवेकानंद, इन सब महान लोगों की शक्ति का राज उनका वो मजबूत अंतःकरण ही था। और गुरुदेव के अनुसार ये शक्ति गायत्री माँ के पोषण से ही जगती है, विकसित होती है।
और पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माँ को ये तीन नाम दिए हैं, देव माता, वेद माता, विश्व माता। ये सिर्फ नाम है या इनके कुछ खास मतलब है?
नहीं नहीं, इनके बहुत गहरे मतलब है। पहला नाम है देव माता।
देव माता,
इसका मतलब है कि गायत्री का ज्ञान, उसकी प्रेरणा इंसान में देवताओं जैसे गुण जगाती है।
देवताओं जैसे गुण, कैसे?
देखिए, देवता अजर कहे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं छूटता, पर उनका उत्साह, हिम्मत, जीने की ललक, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। वो निराशा से, मनहूसियत से दूर रहते हैं, हमेशा एक ताजगी रहती है उनमें।
अच्छा, मतलब एक अंदरूनी जीवंतता।
बिल्कुल। और दूसरा, देवता देना जानते हैं, वो सिर्फ लेने की नहीं सोचते। अपना समय, अपना ज्ञान, अपना स्नेह, अपनी क्षमता वो दूसरों के लिए लगाते हैं, समाज को देते हैं। गायत्री हमें ये देवत्व वाले गुण सिखाती है।
ये तो हुई देव माता की बात। अब वेद माता, इसका क्या अर्थ हुआ?
वेद माता इसलिए क्योंकि पूज्य गुरुदेव गायत्री को अपनी भारतीय संस्कृति और सारे वैदिक ज्ञान का, आप कह सकते हैं, मूल स्रोत मानते हैं, बीज मानते हैं।
अच्छा, बीज।
हाँ, उनका कहना था कि गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर है ना, वही 24 अवतार, 24 दिव्य शक्तियां, या जैसे महर्षि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उन सब के प्रतीक हैं।
ओ।
तो एक तरह से दुनिया का सारा आध्यात्मिक ज्ञान वो इन 24 अक्षरों में बीज रूप में छिपा है। गायत्री वो चाबी है जो उस ज्ञान के खजाने को खोलती है। वो ज्ञान की आदि माँ है,
ज्ञान का आदि स्रोत। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा नाम विश्व माता।
विश्व माता, इसका संबंध है वसुदेव कुटुम्बकम से।
सारी पृथ्वी एक परिवार है।
जी, ये वो चेतना है जो हमें ये महसूस कराती है कि हम सब एक ही हैं। ये हमें एकड़ बनने से रोकती है।
एकड़ मतलब?
एकड़ बकलब, जो सिर्फ अपने में ही रहता है, स्वार्थी, समाज से कटा हुआ। विश्व माता की भावना हमें सिखाती है कि हम सब एक ही माँ की संतान है, और जिनका सामर्थ्य है, जो सक्षम है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो पीछे रह गए हैं, जो जरूरतमंद हैं,
उनकी मदद करें, उन्हें सहारा दें।
हाँ, उन्हें हाथ पकड़कर ऊपर उठाएं। ये विश्व माता का संदेश है।
गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में ये भी बताया है कि कैसे कुछ गलत फहमियों की वजह से लोग गायत्री से दूर हो गए।
हाँ, ये बड़ा दुखद पहलू रहा है। कुछ लोगों ने अपनी सीमित सोच के कारण कह दिया कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है या सिर्फ पुरुषों के लिए है। कुछ ने कहा कि कलयुग में इसका असर नहीं होता, ये शापित है।
हाँ, ये सुनने में आता है कभी कभी।
जबकि पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर देकर कहा कि ये सब गलत धारणाएं हैं। गायत्री किसी एक वर्ग की या किसी एक लिंग की नहीं है, ये तो सार्वभौम है, पूरी मानवता की धरोहर है
जी।
ये आत्मा को ऊपर उठाने का विज्ञान है, जैसे गांधी जी ने भी कहा था जामिया मिलिया में कि ये किसी एक मजहब की नहीं, ये तो सबकी प्रार्थना है।
तो मतलब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या कर्मकांड भर नहीं है?
बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने की एक पूरी प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री का सही अभ्यास इंसान को सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह से मजबूत बनाता है,
हर स्तर पर।
जी हाँ, और इसी अनुशासन के प्रतीक के तौर पर वो शिखा रखने की बात करते थे जो बुद्धि पर नियंत्रण का प्रतीक है।
हाँ, चोटी।
और यज्ञोपवीत जनेऊ वो हमें हमारे कर्तव्यों और मर्यादाओं की याद दिलाता है। ये बाहरी चिन्ह उस भीतरी अनुशासन को दिखाते हैं जो गायत्री साधना लाती है।
तो आज हमने पूज्य गुरुदेव के उस महत्वपूर्ण उद्बोधन वेद माता, देव माता, विश्व माता के जरिए गायत्री के कितने अलग अलग पहलुओं को समझा। एक माँ शरीर देती है और दूसरी माँ आत्मा को गढ़ती है
जी। और ये समझा कि असली ताकत, असली अमीरी बाहर की चीजों में उतनी नहीं है जितनी एक सधे हुए शक्तिशाली अंतःकरण में है। और ये अंदरूनी ताकत गायत्री के ज्ञान और साधना से पाई जा सकती है।
तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं हम कि क्या हम अपनी रोज की भागदौड़ में, बाहर की दुनिया में सफल होने की कोशिश में, अपने अंदर के इस केंद्र, अपने अंतःकरण को पोषित करने का समय निकाल पा रहे हैं?
सोचने वाली बात है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर की चीजों के पीछे भागते भागते हम अपनी ही अंदरूनी शक्ति के सबसे बड़े स्रोत से अनजाने में दूर होते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।